आर्यांश ने रक्षित से अपना बदला ले लिया था। उसने उसे अरेस्ट करवाकर सारे गुनाह उसके सिर डाल दिए थे। रक्षित तो सलाखों के पीछे पहुंच गया था, लेकिन दीवा के डैड मिस्टर नवीन गोयनका अभी रिहा नहीं हुए थे। दीवा ने इस बारे में आर्यांश से पूछा तो एक बार फिर उसका जवाब वही था, जब दीवा उसके पास आ जाएगी तब वो उसके पापा को रिहा करा देगा। जिस हिसाब से रक्षित और कनिष्का के खिलाफ रातोंरात सबूत मिले थे, उससे साफ था कि आर्यांश काफी पावरफुल है। नवीन बेगुनाह ही क्यों ना हो, पर आर्यांश की मर्जी के बिना वे बाहर नहीं आ सकते थे। दीवा ने खुद को मजबूत किया और आर्यांश के पास आने की हामी भर दी थी। दीवा के हाँ कहते ही आर्यांश के चेहरे पर एक हल्की जेन्युइन स्माइल आ गई। वो बोला, ठीक है फिर, कल से मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ। आज सुबह 10 बजे तक तुम्हारे डैड घर पहुंच जाएंगे और तुम रहने के लिए अपने मेंशन में जा सकती हो। क्या हमेशा के लिए? अचानक दीवा के मुंह से निकला। आर्यांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने कुछ पल रुककर कहा, पहले सिर्फ 2 महीनों के लिए। और उसके बाद दीवा ने हैरानी से पूछा, वो सीक्रेट है? आर्यांश ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। दीवा ने गुस्से से अपनी मुठियां कस ली थी। वो चाहकर भी आर्यांश को इनकार नहीं कर पाई। आर्यांश ने उसके डैड के सारे लोन चुकाए थे, उनके घर वापस दिलवाए थे और अब उसे जेल से भी रिहा करवा रहा था। ठीक है, लेकिन मैं तुम तक कैसे पहुंचूंगी? मैं तुम्हारा घर नहीं जानती हूँ, दीवा ने जवाब दिया। मैं किसी को लाने के लिए भेज दूंगा। तुम्हारे पास अपनी फैमिली के पास बिताने के लिए 1 दिन होगा। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उन्हें कैसे कन्विंस करती हो, लेकिन हाँ, पीछे हटने का रास्ता नहीं है, आर्यांश ने सधे हुए लहजे में कहा। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी बिजनेस डील को फाइनल कर रहा हो। दीवा ने आर्यांश के साथ रहने के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या सच में अब उसे अगले 2 महीने आर्यांश के साथ रहना पड़ेगा और उसकी सारी बातें माननी होंगी? दीवा ने हमेशा सच्चे प्यार की चाहत की थी। उसे इस तरह के कंडीशनल लव से सख्त चिढ़ थी, लेकिन आज उसके साथ वही हो रहा था। उसकी जिंदगी पूरी तरह आर्यांश की शर्तों पर टिककर रह गई थी। आर्यांश से बात करके दीवा ने कॉल कट किया और फिर अपनी मॉम प्रार्थना के पास गई। वो बोली, मॉम, मेरी लॉयर से बात हो चुकी है। उन्होंने बोला कि डैड को कुछ देर में रिहा कर दिया जाएगा और हमें हमारा घर भी वापस मिल गया है। चलिए वापस चलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें हमारा सब कुछ वापस मिल गया, प्रार्थना ने मुस्कुराकर कहा। प्रार्थना खुश थी और उसके पापा बाहर आ रहे थे। दीवा के लिए यही काफी था। वो नहीं जानती थी कि उनकी इस खुशी के लिए दीवा ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। थोड़ी देर में पैकिंग करके वे अपने घर पहुंच चुके थे। उनका घर उसी तरह करीने से सजाया हुआ था। आर्यांश ने अपना वादा निभाया। ठीक 10 बजे के करीब नवीन गोयनका अपने घर पहुंच चुके थे। उसे देखते ही दीवा उसके पास गई और उनके गले लग गई। पापा, हम वापस आ गए। मुझे यकीन था कि हम सच को साबित कर देंगे, दीवा ने नम आंखों के साथ कहा। उसकी आवाज में राहत और दर्द दोनों थे। नवीन के घर वापस आते ही मानो उसके दिल से एक बड़ा बोझ हट गया था। वो अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाई, इस बात का उसे दुख था। उनके गले लगते ही दीवा का सारा दर्द बाहर आने लगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। पिछले कुछ दिन उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। पहले रक्षित ने उसे धोखा दिया, फिर उसके डैड जेल चले गए, उसके बाद आर्यांश का उसकी जिंदगी में आना, और अब वो आर्यांश के साथ रहने का वादा कर चुकी थी। नवीन ने प्यार से दीवा को सहलाया और कहा, पागल लड़की, अब सब ठीक हो गया है, अब क्यों रो रही हो? दीवा उनसे अलग हुई और उनकी तरफ देखने लगी। वे काफी मजबूत थे, पिछले दिनों में उन्होंने काफी कुछ सहा था और उसके गवाह उनके शरीर पर पड़े चोट के निशान थे। दीवा ने रोते हुए हल्का मुस्कुराकर कहा, हाँ अब सब ठीक है, तो रोने की क्या बात है? नवीन ने प्यार से दीवा के सिर पर हाथ रखा। इस बीच प्रार्थना किचन में थी। वो नवीन के लिए उनका फेवरेट खाना बना रही थी। प्रार्थना जल्दी से बाहर आई, उसके हाथ में केक था। डियर हस्बैंड, आपके घर में आपका स्वागत है, प्रार्थना ने मुस्कुराकर कहा और केक उनके आगे कर दिया। मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया और अब मैं तुम दोनों को कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। नवीन ने उन दोनों को अपनी बाहों में भर लिया था। नवीन के वापस आते ही जैसे घर की रौनक लौट आई थी। पहले की तरह वहां उनके हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। उनके साथ अच्छा टाइम बिताने के बाद दीवा अस्पताल पहुंची। उसने देखा कि कुछ नर्सों का ग्रुप इकट्ठा होकर बातें कर रहा था। आज उनके गॉसिप का टॉपिक कोई और नहीं, दीवा ही थी। अब तक उसके बैकग्राउंड के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन नवीन के लाइमलाइट में आने की वजह से दीवा का सच भी खुल गया था। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर गोयनका किसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनको देखकर ही लगता है कि वो कितनी क्लासी हैं। हाँ सही कहा, उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि वो इतनी प्रॉब्लम्स का सामना कर रही हैं। मैंने सुना कि उनके पापा को उन्हीं के मैनेजर ने धोखा दिया और उन्हें जेल करवा दिया था। बेचारी इतनी परेशान थी, तभी मैं सोचूं कि वो इतनी खोई हुई क्यों रहती है। मैंने तो ये तक सुना है कि उन्होंने पियानो कॉम्पिटिशन जीता है। अगर वो पियानो बजाने में इतनी अच्छी है तो फिर डॉक्टर क्यों बनी? पियानो कॉन्सर्ट से ज्यादा पैसे मिलते हैं। अरे उन्हें पैसों की क्या जरूरत है, वे इतनी अमीर हैं, हो सकता है कि डॉक्टर बनना उनका सपना रहा होगा, इसीलिए वो डॉक्टर बन गई। वो सब दीवा के बारे में बातें कर रही थी तो उनमें से नव्या भी खड़ी थी। उनमें से एक ने नव्या से पूछा, अच्छा सिस्टर नव्या, तुम तो ज्यादातर डॉक्टर दीवा गोयनका के आसपास ही रहती हो, क्या उन्होंने तुम्हें इस बारे में बताया? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता है, और प्लीज आप लोग भी बात मत करो, नव्या ने मायूसी से जवाब दिया। अब तक वो दीवा को अपनी फ्रेंड की तरह समझती थी, लेकिन दीवा ने उसे अपना सच छुपाया, ये जानकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उनमें से आगे कोई कुछ कहती उससे पहले ही उनकी नजर दीवा के ऊपर पड़ी। दीवा उनकी तरफ आ रही थी, वो सब चुप हो गई। दीवा को अचानक अपने सामने देखकर एक नर्स हड़बड़ा गई थी। वो बोली, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे। दीवा आज काफी खुश थी, उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सबको मेरे बारे में कुछ जानना है तो डायरेक्ट पूछ लो, ऐसे पीछे से बातें करना अच्छी बात नहीं। अगर डॉक्टर मल्होत्रा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम सबको बहुत डांटने वाले हैं। उन सब ने एक एक करके अपने बिहेवियर के लिए दीवा से सॉरी कहा और वहां से चली गई। नव्या भी वहां से जाने को हुई, तभी दीवा ने कहा, नव्या बैठकर बात करें। नव्या के चेहरे पर मायूसी देखकर दीवा समझ गई थी। नव्या ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों दीवा के केबिन में आई, तब दीवा ने उसे बैठने का इशारा किया। दीवा ने नव्या से कहा, तुम इस अस्पताल में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। सच कहूं तो मैंने पहले कभी दोस्त नहीं बनाई, और जिनको भी दोस्त बनाया था वे मेरे एक्सीडेंट के बाद से मुझे छोड़कर चले गए। मुझे लोगों को खोने से डर लगता है, बस यही कर मैं उनसे ज्यादा घुल मिल नहीं पाती। अरे डॉक्टर गोयनका, आप इस तरह सफाई मत दीजिए, और आप किस एक्सीडेंट की बात कर रही हैं? नव्या ने जवाब दिया। वे दीवा के लिए परेशान होने लगी।
अचानक दीवा के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए थे। वह वक्त सच में उसके लिए मौत से कम नहीं था। उसने नव्या की तरफ देखा और गहरी सांस भरकर कहा, 4 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। शायद ऊपर वाले ने मेरी उम्र लंबी लिखी थी, वरना मैं उस एक्सीडेंट में लगभग मर गई थी। वो वक्त सोचकर अभी भी दीवा की रूह कांप जाती थी। नव्या ने उसके हाथ को सहलाया और कहा, अरे नहीं डॉक्टर गोयनका, अगर वो बातें आपको इतनी तकलीफ दे रही हैं तो उसके बारे में मत सोचिए, और मैं लोगों की बातों में नहीं आती हूँ। अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो इसमें आपकी कोई मजबूरी रही होगी। नव्या काफी समझदार लड़की थी। दीवा ने तुरंत ही उन्हें मना लिया था। वो दोनों बैठकर बातें कर रही थी, तभी डॉक्टर यथार्थ मल्होत्रा वहां पर आए। उन्होंने इस तरह बातें करते हुए उन दोनों की तरफ देखा। दीवा जल्दी से खड़ी हुई और बोली, एक्चुअली मैंने नव्या को किसी काम से बुलाया था, बेहतर होगा अगर यहाँ काम की ही बातें हों। डॉक्टर यथार्थ ने सिर हिलाकर कहा और फिर वहां से चले गए। उनके वहां से जाते ही दीवा और नव्या ने राहत की सांस ली। वो तो वैसे भी दीवा को पसंद नहीं करते थे। अगर दीवा से कोई गलती भी हो जाती तो वो नेगेटिव मार्किंग करने के चांसेस ढूंढते थे। दीवा ने हल्का मुस्कुराकर नव्या की तरफ देखकर कहा, शाम को कॉफी पर बात करते हैं, तुम अब जाओ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, और मेरी बात याद रखना, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। उसके इस स्वीट जेस्चर को देखकर नव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अब उसकी उदासी दूर हो गई थी। शाम को काम खत्म होते होते दीवा को अपने सभी पेशेंट को चेक करने जाना था, और इस वक्त वो सौरभ बजाज के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। दीवा को अभी भी आर्यांश पर भरोसा नहीं था। उसे पूरा शक था कि आर्यांश जरूर उन पर हमला करने की कोशिश करेगा। तो वहीं आर्यांश का बार बार अस्पताल में आना सौरभ बजाज के मन में शक पैदा कर रहा था। उनका रिश्ता ऐसा नहीं था कि वो उनसे मिलने के लिए वहां बार बार आए। आज सौरभ ने भी सारा सच पता लगाने की ठान ली थी और वो दीवा के आने का इंतजार कर रहे थे।